ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए कर्णाली प्रदेश के 10 जिलों में मतपत्रों की ढुलाई संपन्न। आगामी चुनाव की सफलता के लिए सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया आग्रह। लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण को मूल लक्ष्य बताते हुए जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने चुनावी घोषणा पत्र किया सार्वजनिक। और संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को मिला 2/3 से अधिक बहुमत। अब समाचार विस्तार से। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए रविवार तक सभी मतपत्रों की छपाई पूरी हो जाएगी। कुल 2,03,00,000 मतपत्र छापे जाने हैं, जिनमें से अब तक 1,73,00,000 मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। रविवार तक सभी मतपत्रों की छपाई पूरी हो जाएगी। ये जानकारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यदुनाथ पोडेल ने दी। केंद्र द्वारा छापे गए 10,00,000 नमूना मतपत्रों को निर्वाचन आयोग विभिन्न स्थानों पर पहुंचा चुका है। उन्होंने बताया कि समानुपातिक प्रणाली वाले 2,08,30,000 मतपत्रों की छपाई कर जिलों में भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। केंद्र के अनुसार कर्णाली प्रदेश के सल्यान, रुकुम, पश्चिम डुलपा, मुगु, हुमला, कालीकोट, जुमला, जाजरकोट और दैलक सहित सुर्खेत के निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों की ढुलाई पूरी हो चुकी है। कुल 58 जिलों के 124 निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की छपाई पूरी कर उनकी ढुलाई जारी है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश को निकास देने के लिए आगामी चुनाव की सफलता के लिए सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। पूर्वी पहाड़ी जिले तापलेजुंग के पाथीभरा क्षेत्र के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से आज संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को सफल बनाने में सभी के योगदान आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री कार्की ने फुंगलिंग में मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रमुख जिला अधिकारी और सुरक्षा निकायों के जिला प्रमुखों के साथ चुनाव की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार राम बहादुर रावल ने दी। प्रधानमंत्री कार्की ने पाथीभरा मंदिर में दर्शन भी किए। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक किया है। घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय, समावेशिता, समान अवसर और पारदर्शी शासन के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण करने को मूल लक्ष्य रखा गया है। सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिशु कक्षा से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा तक पूरी तरह निःशुल्क देने, सहकारी पीड़ितों को न्याय दिलाने लगायत वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं। घोषणा पत्र सार्वजनिक करते हुए पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संस्थागत करते हुए आगे बढ़ेगी। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने कहा कि सत्य और तथ्यपरक समाचार प्रसारित कर मतदाताओं को जागरूक बनाने में आम संचार माध्यमों और पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आज काठमांडू में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचन और आम संचार विषयक कार्यशाला गोष्ठी में उन्होंने कहा कि देश में शांति, सुशासन और विकास के लिए निर्वाचन आवश्यक है और इसलिए स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सहयोग लेने और खर्च करने के सभी कार्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से करने होंगे और आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा के भीतर रहकर ही चुनावी खर्च करना होगा। आईजीपी दान बहादुर कार्की ने आगामी निर्वाचन के दौरान उत्पन्न हो सकने वाली चुनौतियों के संबंध में समय पर सूचना एकत्र करने और सुरक्षा संवेदनशीलता का विश्लेषण करते हुए परिचालन करने का निर्देश किया है। आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संवेदनशीलता और समसामयिक विषयों पर आज उन्होंने वर्चुअल माध्यम से पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए निर्वाचन को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में लेने और इसे भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने का आग्रह किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी।
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार।
अब बाकी समाचार। आज राष्ट्रीय सभा की बैठक में मुस्लिम आयोग के आर्थिक वर्ष 2080-81 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री सुशीला कार्की की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने प्रतिवेदन पेश किया। बैठक में विधायन व्यवस्थापन समिति की सभापति तुलसा कुमारी दाहाल ने संघीय इकाइयों के बीच विधायी अंतर संबंध अध्ययन प्रतिवेदन 2082 और बाल बालिका संबंधी आयन 2075 में निहित बाल सहभागिता संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन मापन प्रतिवेदन 2082 प्रस्तुत किया। बैठक में गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने स्पष्ट किया कि अध्यागमन प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार सुधार के प्रयास कर रही है। अध्यागमन आयन 2049 और उसके अंतर्गत बने प्रत्यायोजित विधायन संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन 2082 पर चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि अध्यागमन सेवा को सेवाग्राही मैत्री बनाने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए हैं। इससे पहले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति के सभापति माया प्रसाद शर्मा ने उस प्रतिवेदन पर चर्चा किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय सभा का 19वां अधिवेशन आज ही समाप्त हो गया। बता दें कि राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की माघ 26 की सिफारिश पर आज रात 12 बजे से लागू होने के हिसाब से चालू अधिवेशन समाप्त करने की घोषणा की थी। राष्ट्रसभा के अध्यक्ष ने बैठक में राष्ट्रपति से प्राप्त अधिवेशन समाप्ति संबंधी पत्र की जानकारी दी। महाशिवरात्रि के लिए पशुपति क्षेत्र में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ने दी। कोष के सदस्य सचिव प्रकाश मणि शर्मा भूसाल ने कहा कि विश्व शांति शिवतत्व से ही संभव है, इसलिए महाशिवरात्रि पर्व को विश्व शांति से जोड़कर मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। महाशिवरात्रि नजदीक आते ही पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु भक्तों, साधु संतों और दर्शनार्थियों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। इसी बीच महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को स्नान की सुविधा और नदी की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से बागमती नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए धाप डैम से पानी छोड़ा गया है। अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति के अंतर्गत बागमती सुधार आयोजना ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए आज से नदी में पानी छोड़ा गया है। अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सही सूचना का समय पर प्रवाह बहुत जरूरी है। मीडिया में सूचना के अधिकार के उपयोग से संबंधित आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री खनाल ने कहा कि सूचना तक असमान पहुंच के कारण बाजार में बड़ा असंतुलन देखा गया है। कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि जो सूचनाएं स्वेच्छा से उपलब्ध नहीं कराई जाती उन्हें मांगना और बिना मांगे भी सूचनाओं को सार्वजनिक करना पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और गलत सूचना के प्रवाह को रोकने में मदद करता है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल रेडियो नेपाल ने आज शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस मनाया। सिंहदरबार स्थित रेडियो नेपाल कार्यालय में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि सत्य और तथ्यपरक सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रेडियो प्रसारण को आधुनिक तकनीक से जोड़ना जरूरी है। कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की संचालक समिति सदस्य अनिता गुरुंग ने कहा कि पहुंच और लोकप्रियता के आधार पर रेडियो अन्य संचार माध्यमों की तुलना में अधिक सशक्त माध्यम है। उन्होंने समय की मांग को समझते हुए आने वाले दिनों में रेडियो को नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच रेडियो नेपाल में आयोजित सार्वजनिक खरीद संबंधी आधारभूत प्रशिक्षण भी आज सम्पन्न हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। संसद की 299 सीटों में बीएनपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 207 सीटें, जमात ए गठबंधन को 79 सीटें और अन्य को 9 सीटें मिली हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय संसद के चुनाव और जनमत संग्रह 12 फरवरी गुरुवार को एक ही दिन आयोजित किए गए। अब बांग्लादेश एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है। 18 महीनों की अंतरिम सरकार के बाद चुनाव आखिरकार संपन्न हुआ है। बांग्लादेश में लगभग 12.77 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें लगभग आधी महिलाएं थीं। कुल 2028 उम्मीदवारों और 50 राजनीतिक दलों के चुनाव में हिस्सा लिया था। चुनाव आयोग ने बताया कि इस चुनाव में 59.44% वोट डाले गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए कर्नाली प्रदेश के 10 जिलों में मतपत्रों की ढुलाई संपन्न। आगामी चुनाव की सफलता के लिए सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया आग्रह। लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण को मूल लक्ष्य बताते हुए जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने चुनावी घोषणा पत्र किया सार्वजनिक। और संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को मिला 2/3 से अधिक बहुमत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।